ये आकाशवाणी है। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस क्रम में आज प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा, संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिनंदिता माथुर और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद।
संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। राष्ट्रपति के अभिभाषण जनवरी 31 को होगा और 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। 4 अप्रैल तक चलेगा सत्र, लेकिन 13 फरवरी और 10 मार्च के बीच में अवकाश रहेगा। सदन की बैठक नहीं होगी, लेकिन बजट पे चर्चा होगी कमेटी द्वारा। संसद की प्राथमिकता तो रहेगी, बजट के दौरान तो रहता ही है कि बजट पारित हो, सरकार चाहेगी वित्त सिस्टम है वो सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन विपक्ष की ओर से भी तैयारी है कि कुछ मुद्दों को उठाएं जिसको लेकर वो चाहेंगे कि सरकार को कठघरे में खड़ा करें। ऐसे में देखा गया कि पिछले सत्र में काफी हद तक की सरकार और विपक्ष के बीच में कुछ नोकझोंक तो रही, लेकिन विपक्ष के बीच में भी कोई बहुत ज्यादा तालमेल नहीं दिखा कुछ मुद्दों को लेकर। आइए समझे आने वाले सत्र पे। हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट की तरफ से विकास रंजन अपनी बात रखेंगे, अभिनंदिता माथुर जी जो कि आम आदमी पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी से गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। डॉक्टर हुसैन, हम जानना चाहेंगे विपक्ष की तरफ से आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी इस आने वाले सत्र में।
अपोजिशन का काम होता है कि जो जन के मुद्दे हैं, जन की आवाज़ है, जन के इश्यूज हैं, जो हादसे होते हैं, इन तमाम इश्यूज को पार्लियामेंट में उठाएं। उसके साथ में जो सरकार के विफलताएं रहते हैं, नाकामयाबियां जो रहते हैं, उसको लोगों के सामने लेके, और उसके साथ साथ अगर लगता है कि सरकार कोई गलत काम कर रही तो उसको अपोज करें। इन तमाम इश्यूज तो रहेंगे, जैसे हर साल की तरह इस बार भी जो प्रेसिडेंट एड्रेस रहेगा, जब प्रेसिडेंट एड्रेस रहेगा तो उसमें क्या निकल के आएगा, क्या विजन आएगा, क्या रोडमैप आएगा, जो 2-3 दिन की बहस होगी उसमें अपोजिशन पार्टीज के नुमाइंदे अपनी बात रखेंगे, और साथ में जब बजट प्लेस होगा तो बजट के एनालिसिस करेंगे, बजट के खामियों को सामने रखेंगे, बजट का डायरेक्शन, बजट का विजन को लेके जो है हम जो आलोचना करना उसको करेंगे। हम चाहते हैं कि जो है खुल के बहस हो, पिछले सेशन में भी हम चाहते थे बहस करें, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर देखा गया कि पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष के एमपी, ट्रेजरी बेंचेस के एमपी बात करने नहीं दे रहे थे, सरकार बहस से भाग रही थी। हम इस बार बहस करना चाहते हैं और इन तमाम इश्यूज को उठाना चाहते हैं।
विकास जी, हम समझना चाहेंगे कि किस तरह की रणनीति अपनाई जाएगी।
हमारा देश में ये बजट सेशन है, बजट सेशन पर अर्थनैतिक के मुद्दे पर जरूर चर्चा होगा। हमारा रुपया घट रहे है, घटते घटते कहाँ पहुँचे पता नहीं है। हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन में बहुत स्थिति नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये महंगाई हो रही है, इसका खिलाफ सरकार का कोई इतिबाचक कदम नहीं उठाया, इसका खिलाफ हम जरूर आवाज उठाएंगे। हम कोशिश करेंगे हर अपोजिशन को इसी आधार पर एकजुट करने के लिए।
अभिनंदिता जी, हम जानना चाहेंगे आम आदमी पार्टी जो विपक्ष में है इस वक्त लोकसभा में, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और क्या अप्रोच रहेगा विपक्ष की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले सत्र में।
आम आदमी पार्टी हमेशा की तरह आम आदमियों की आवाज को, आम इंसानों की आवाज को, देश के एक आम नागरिक की आवाज को सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाने का काम करती है। आज हमारे देश में एक बड़ा यूनिक क्राइसिस है, और वो क्राइसिस है कि वो मिडिल क्लास जिसके कंधों पे देश बनता है, जिसके कंधों पे, जिसके हार्डवर्क से इकोनॉमी चलती है, वो जो मध्यम वर्ग है, ना तो वो एक वोट बैंक रहता है और ना ही वो एक प्रायोरिटी रहती है गवर्नमेंट के लिए। और इस पर्टिकुलर रिजीम ने मिडिल क्लास की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, जो कि मिडिल क्लास एक देश की रीढ़ की हड्डी खुद होती है। वो परिश्रम करते हैं, अपना टैक्स चुकाते हैं और इस देश को मजबूती से आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आज इनकी जो आवाज है, जो मिडिल क्लास की आवाज है, वो बनने से पहले ही टूट जाती है, क्योंकि आप अपनी रोज की उलझनों में बुरी तरह परेशान रहते हैं। तो हमेशा की तरह आम आदमी पार्टी की प्रायोरिटी यही रहेगी कि जो आम इंसान की तकलीफें हैं उनको पार्लियामेंट में मजबूती से बुलंद आवाज में कहा जाए, उसकी थोड़े प्रायोरिटी जो है वो देश के गरीब और मिडिल क्लास लोगों की तरफ लेके जाएं कि आप ये कर क्या रहे हैं, आप तो अपने लिए बिल्कुल सूट बूट सरकार बनाए हुए हैं, लेकिन आम आदमी का क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट की हालत इतनी खराब है, आप देखिए कि यूथ जो है हमारा वो बिल्कुल बेरोजगार बैठा है। पढ़े लिखे लड़के लड़कियां आज मिलियन जॉब्स कर रहे हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार आज अपने लाइफ को प्लान नहीं कर सकता, अपनी फैमिली प्लान नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें यही भरोसा नहीं है कि कल उनके पास कोई सिक्योरिटी होगी कि नहीं होगी। किसी भी रूप से अपनी परेशानियों का हल ढूंढना हो तो आदमी सरकार की तरफ देख नहीं पा रहा है। इन मुद्दों पर हम जरूर आवाज उठाएंगे।
अग्रवाल जी, हम समझना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या प्राथमिकता रहेगी। सरकार अपना बजट पेश करेगी और पूरा जोर रहेगा कि बजट सुचारू रूप से पेश भी हो और पारित भी हो, तो प्राथमिकताएं वित्त मंत्री अपनी दोहराएंगी, तो उसको लेकर बीजेपी की क्या अपेक्षा है?
बजट बहुत महत्वपूर्ण सेशन होता है और देश की अर्थव्यवस्था अभी ऐसे मोड़ पे है जब अगर रिफॉर्म्स और पॉलिसीज के अंदर सरकार पॉजिटिवली काम करके अच्छे चीजें लेके आती है तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आने वाले समय में आगे बढ़ सकती है। पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था अगर आप देखें तो ग्लोबल लेवल पे सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और सरकार की प्राथमिकता है कि गरीबी पूरी तरह से उन्मूलन हो, देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से आगे बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए नए नए आयाम खुलें और जो टैक्सेशन के जो इश्यूज हैं उन सबको भी सॉर्ट आउट करें। तो मुझे लगता है कि हमारी प्राथमिकता इसी बात की है कि अर्थव्यवस्था को तेज गति से इस बजट के माध्यम से और प्रोपेल कैसे करें। देखिए, अर्थव्यवस्था ऐसी चीज है जिसमें सारे देश का इंटरेस्ट है और अपोजिशन से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आर्थिक मामलों में राजनीति को लेके खींचतान ना करें। अर्थव्यवस्था देश के लिए महत्वपूर्ण है, समाज के हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है और देश को विश्व के लीडरशिप के रोल में स्थापित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
डॉक्टर हुसैन, पिछले सत्र में ये देखा गया कि विपक्ष के बीच में कुछ बिखराव की स्थिति दिखती आई, खासकर कुछ आपके जो इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथी थे वो अपना अलग ही मुद्दे उठाना चाहते थे कांग्रेस से हटकर, तो ऐसे में आपको लगता है कि विपक्ष की जो एकजुटता है उस पर कहीं ना कहीं दरार दिख रही है जिसको लेकर आप और जो कांग्रेस और की तरफ से जो विपक्ष के नेतृत्व है उसके भी सवाल या निशान उठ रहे हैं?
तमाम अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग एजेंडा है, अलग अलग आइडियोलॉजी है। हम सारे पार्टी 2024 के इलेक्शन के पहले हम लोग एक साथ आए थे, ये एजेंडा के साथ आए थे, देश को बचाना, डेमोक्रेसी को बचाना और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की बात थी। तो संविधान में जो दिए गए हुकूक का जो हनन होता, जो आवाज दबाई जा रही थी, जो कुचली जा रही थी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज हैं, ऑटोनोमस एजेंसीज हैं, उसका दुरुपयोग जो हो रहा था और उसको खत्म करने की जो साजिश, उसको डिस्क्रेडिट करने की खास्ता साजिश जो चल रही थी, उसके खिलाफ हम लोग एकजुट है कि एक नया विजन, एक नया रोड मैप के साथ हम लोगों के बीच में गए थे, काफी सफलता उसमें मिली। लेकिन आज जब वो रोल खत्म हो गया है तो अलग अलग स्टेट में जब चुनाव हो रहे हैं और उन चुनाव में अलग अलग मुद्दे लेके लोकल पार्टी सबने काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर ज्यादातर जो मुद्दे होते हैं जिसपे अपोजिशन एक होकर जाती है, लेकिन एक आध दो मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ पार्टियों को अनकंफर्टेबल महसूस होता है या ना तो कुछ पार्टियों को लगता है कि उसको उठाना नहीं चाहिए, तो उसका ध्यान भी रखते हैं और हम लोग उनकी उस भावना को रेस्पेक्ट भी करते हैं, हम उनको अलो भी करते हैं कि वो अपने हिसाब से वो स्टैंड ले, लेकिन मोर और लेस ज्यादातर मुद्दों को हम साथ में इकट्ठा होकर लड़ते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं।
विकास जी, विपक्षी एकजुटता को लेकर पिछले सत्र में कुछ सवाल उठे थे, तो क्या आपको लगता है इस सवालों को लेके कुछ जवाब आएंगे या विपक्षी एकता में जो बिखराव दिखने को मिला उसमें कोई कमी आएगी या ऐसे ही चलता रहेगा?
देखिए, ये सारे पार्टी को इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, इंडिपेंडेंट आउटलुक भी है, फिर भी अब सारे पार्टी एकजुट होता है सरकार, केंद्रीय सरकार के खिलाफ, उनका नीतियों के खिलाफ, अर्थनैतिक स्थिति के खिलाफ, मेन मुद्दे पर ये पार्टी सब लोग आपस में मिलजुल हो जाएगा। जो डिफरेंसेस होता है ये होना भी स्वाभाविक है क्योंकि ये होमोजीनियस नहीं है, अगेन ये है यूनिटी, यूनिटी ऑफ ऑल पार्टीज। सरकार सोचते हैं एक देश, एक आदमी, एक नेता, एक धर्म, ये नैतिकता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन का नैतिकता जो है इसमें हमें विभिन्नता का सवाल करना पड़ेगा, विभिन्नता में हमारा ईको है, ईको में भी विभिन्नता है, ये है पॉलिसी ऑफ फेडरलिज्म, इसको मानना पड़ेगा, इसको हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसी ऊपर चर्चा होगी एवं इसी चर्चा के आधार हम सब एकजुट होंगे।
तो उसे पिछले सत्र में ये भी देखा गया था, कुछ स्वर इस तरह के सुनाई दिए जिसमें लोगों ने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व जो है इंडिया अलायंस को लेकर कुछ ठहराव की स्थिति है या कुछ बदलाव होना चाहिए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस तरह की बात से एकजुट जो विपक्ष दिखता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढीलापन महसूस होता है?
देखिए, हम लोग को एक चीज को समझना चाहिए कि नेतृत्व वही पार्टी का चीज जिसके नुमाइंदे ज्यादा है और जिसका स्टंट ज्यादा है, एक। दूसरा जो है, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद में नेतृत्व का सवाल सेट हो गया है। लोकसभा में राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन बन चुके हैं और रोल लिए हैं, बाखूबी तरीके से वो रोल को निभा रहे हैं। राज्यसभा में पहले से ही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन आए और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एकजुट करके लड़ाई पिछले कई सालों से लड़ते आए, आने वाले दिनों में लड़ेंगे। तो नेतृत्व का सवाल सेटल्ड है। अब जाहिर सी बात है, जब एस्पिरेशन ज्यादा होते हैं, जब लोगों को लगता है, पार्टियों को लगता है कि हम लोग को भाजपा को डिफीट करना चाहिए, लगता है कि हम लोग अलग अलग स्टेट में उनके खिलाफ खड़े होना लड़ना चाहिए, कहीं खामियामा जहां हो जाते हैं, कहीं जो स्टेट में चुनाव जीतते हैं जब कोई कुछ बोलता नहीं, कभी जब हार जाते हैं क्योंकि उनकी ख्वाहिश होती है कि चुनाव हम जीते, उस होप से जो जीते रहते हैं उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ अमिस है, कुछ गड़बड़ है, तो उसमें इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं। बट लार्जली जो है लीडरशिप इशू सेटल्ड है इंडिया अलायंस में।
अभिनंदिता जी, पिछले बार ही देखा गया बजट के जो शुरू होने से पहले कि विपक्ष के बीच में एकजुटता जो दिखाई गई थी और इंडिया गठबंधन के बीच में कुछ दरार सी नजर आ रही थी, थोड़ी बिखराव दिख रहा है, तो क्या ये स्थिति बदलेगी या ऐसा ही रहने के अनुमान है आप?
देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे नेता है, उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात वो बोलते हैं कि पक्ष विपक्ष पार्टीज, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और पार्टीज, ये इम्पोर्टेंट नहीं है और देश इम्पोर्टेंट है। तो कुछ चीजें होती हैं जहां आप अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जहां आपको यूनैनिमसली एक साथ देश के लिए काम करना होता है। आज अगर आप देखें कि दिल्ली में एजुकेशन रेवोल्यूशन हुई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहना चाहिए कि भाई ये दिल्ली में एक बहुत अच्छा काम हुआ है, क्यों ना हम इसी चीज को देश की अलग अलग जगहों पे इम्प्लीमेंट करें। दैट इज द काइंड ऑफ यूनिलैटरल फोकस जो हम ढूंढ रहे हैं, आम आदमी पार्टी ढूंढ रही है और ला रही है इस देश की राजनीति में। जहां आप किसी भी पार्टी पे हो, आज जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि आपने मेरा स्कूल ठीक क्यों नहीं किया, आपने मेरा अस्पताल ठीक क्यों नहीं किया, ये हम लेकर आ रहे हैं। बाकी ऑपोजिशन की जहां तक आप बात कर रहे हैं, देखिए आम आदमी पार्टी जहां तक कंसर्न्ड है, हम बहुत खुश हैं और हमें गर्व है कि देश की जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, इंडिया अलायंस की पार्टीज हैं, उन सभी ने अपना अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को दिया है और हम उसी शक्ति से, उसी अपने काम के बलबूते पे इस दिल्ली चुनाव में जा रहे हैं और जीत के आएंगे।
अग्रवाल जी, हमने देखा संसद के पिछले सत्र में विपक्ष में कहीं ना कहीं दरार दिखी और विपक्ष की तरफ से ये भी आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ इस तरह का माहौल तैयार हुआ कि सदन सुचारू रूप से नहीं चल पाया। तो क्या आपको लगता है ये सही आंकलन है या इसमें आपको लगता है कि विपक्ष अपनी विफलता छुपाने के लिए सत्ता पक्ष पे इस तरह का आरोप कर रही है?
पिछले कई वर्षों से हम देखें और खासकर 2024 के बाद विपक्ष का जो रोल रहा है संसद में, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और उन्होंने संसद को एक गरिमामय स्थिति से निकाल के एक एजिटेशनल का प्लेटफॉर्म बनाने का प्रयास किया हुआ है। यह अच्छा नहीं है प्रजातंत्र के लिए। संसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे डिस्कशन होंगे, डिबेट होंगे, देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चाएं होंगी, सरकार के कार्यप्रणाली पे आप प्रश्न पूछ के उनके कार्यप्रणाली में जो आपके सजेशंस हैं उनके अंतर्गत आप अपने वक्तव्य दे सकते हैं और फिर जो बिल्स आते हैं, जो कानून बनते हैं, जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, उनके ऊपर जनता की बात आप संसद के पटल पे रख सकते हैं। लेकिन अपोजिशन संसद को चलने नहीं देना, अपनी बात कह के वॉकआउट कर देना, तो यह एक तरीके से संसद की गरिमा को अंडरमाइन करना है और ये अपोजिशन कंटिन्यूसली अलग अलग प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशन के साथ ये कर रहा है, ये ठीक नहीं है और हम तो नहीं चाहते कि इस तरह की कोई व्यवस्था, इस तरह की सिचुएशन पार्लियामेंट संसद में बने। हम तो चाहते हैं कि नए नए कानून बने, अच्छे कानून बने, खराब कानून खत्म हो। हम अपने प्रयास करते रहेंगे क्योंकि गवर्नेंस की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है। गवर्नेंस में पार्लियामेंट जो संसद होता है उसका काम मुख्यतः से कानून बनाना है और कानून ऐसे बने जो कि जनता के हित में बने। तो जो हमें लगता है कि जनता के हित में कानून है और उनकी आवश्यकता है उन कानूनों के बनाने के लिए जो जो भी काम करने होंगे सत्ता पक्ष की तरफ से, हम उन सबको करेंगे। लेकिन चर्चा करने को हम हरदम तैयार हैं, उनके हर अच्छे सजेशंस को अपने पॉलिसी और लीगल मैटर्स में इंकॉर्पोरेट करने को हम तैयार हैं। आइए, मैं तो विपक्ष से कहता हूं कि साथ मिलके इस संसद के माध्यम से देश के विकास, जो अमृत काल में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आह्वान है, उस कार्य के लिए आगे बढ़ाएं। और जहां तक अपोजिशन यूनिटी की बात है, वो तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, जैसे आपने भी कहा कि हम का स्टेट इलेक्शन अलग तरीके से लड़ेंगे, सेंट्रल इलेक्शन में एक साथ लड़ेंगे, तो फिर मुद्दे कहाँ हैं, आइडियोलॉजी कहाँ है, एकता कहाँ है? आप तो एक सत्ता खींचने के लिए, सत्ता को अपने काबिज होने के लिए कन्वीनियंस के हिसाब से अपना एकता की बात करते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी नहीं है, दिशा नहीं है, नीति नहीं है और लीडरशिप नहीं है। तो नेतृत्व तो लीडरशिप का रोल निभाने से होती है, क्या विचारधारा है उससे निर्धारित होती है, और क्या नीतियों पे आप चलना चाहते हैं। तो इन तीनों चीजों में, नीति, लीडरशिप और विचारधारा, अपोजिशन में कोई यूनिटी नजर नहीं आ रही, आपस के डिफरेंसेस और इस बात की लड़ाई चलती रहती है कि कौन प्रधानमंत्री का दावेदार बने या कौन इंडिया अलायंस का लीडर बने, इसमें भी कोई कंसेंसस नहीं है। तो कोहेसिव अपोजिशन नहीं है।
डॉक्टर हुसैन, सत्र शुरू होने से पहले ये तो बात जाहिर है कि बजट पे सारा ध्यान रहेगा, बजट के प्रावधानों पे डिस्कशन रहेगा और प्राथमिकता सरकार की रहेगी कि बजट पास हो। लेकिन कुछ बिल है जिसके ऊपर बिल्कुल नजर पड़ेगी और ध्यान जाएगा, उनमें दो जो है जेपीसी जिनकी कॉन्स्टिट्यूट हुई है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, एक तो वक्फ के ऊपर और साथ ही एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर जो बिल है उसके ऊपर भी, जो दो संविधान में एक संशोधन भी है उसके ऊपर भी बहस या उसकी रिपोर्ट आनी, तो ऐसे में कांग्रेस के क्या रवैया रहेगा इन दोनों पे?
वक्फ पे तो पार्लियामेंट के अंदर भी विरोध की है, जेपीसी में भी विरोध की है, और जिस तरह से जेपीसी को चलाया गया, जिस तरह से स्टेक होल्डर्स की बात नहीं मानी गई, जिस तरह से अपोजिशन एमपीस की बात नहीं मानी गई, जिस तरह से खुल के डिबेट डिस्कशन डिबेट वहां पर बहस नहीं हुई है, तो इससे साफ जाहिर है कि ये एक आई वॉच थे और बिना क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन, बिना मिनट्स दिए, बिना रिपोर्ट दिए, बिना रिप्लाइज जो विटनेसेस आए थे उनका प्रोवाइड किए गए हम लोगों को, इस अमेंडमेंट को पास किया गया। मैं तो कहता हूँ सबके साथ इक्वालिटी होना चाहिए, जो हिंदू को लॉस है सेम लॉ मुसलमान को, जो मुसलमान को है वही लॉ सिख को, और सिख को जो है उसी तरह क्रिश्चियन और पारसी सबको भी होना चाहिए। जो पूजा धर्मस्थल और धर्म से जुड़े हुए जो इंस्टीट्यूशन है, जो इदारे हैं, उनको गवर्न करने के लिए, उनको एडमिनिस्टर करने के लिए मुझे लगता है कि एक तरह के रूल होना चाहिए। मेजोरिटी को अलग, माइनॉरिटी को अलग तरीके के रूल भाजपा क्रिएट करके ये दिखाना चाहती है कि इस देश में माइनॉरिटी जो है दूसरे दर्जे के सिटीजन है, तो इसको पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। उसके साथ में वन नेशन वन पोल का हम ऑलरेडी विरोध किए हैं, अभी पूरे डिटेल्स और पूरे इनपुट्स उनके वो बिल में क्या लाएंगे हमारे सामने आए नहीं, जब वो आएगा तो हम उसके ऊपर एक पोजीशन लेंगे।
डॉक्टर हुसैन, जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफी बातचीत हुई, प्रधानमंत्री भी इसको लिए बार बार कह रहे हैं, राष्ट्रपति जी ने भी अपने संबोधन में 26 जनवरी से पहले जो पूर्व संध्या में बात की उन्होंने भी इसकी बात रखी, तो ऐसे में इस पे बहस की बात करी जा रही है, तो जब बहस होगी और उसमें जैसे आपने कहा शुरुआत में कांग्रेस का जो पोजीशन रहा उसके ऊपर तो आपने अपनी बात रखी है, लेकिन आगे चल के क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि विपक्ष के जो बाकी सारे आपके साथी है उनका क्या इस पे मूड है और क्या आपकी बातचीत हो रही है इन चीजों पे?
इसमें एकदम साफ है कि हम लोगों ने इसको वापस किया था, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकलिटी को लेके हमारे सामने थोड़ा संदेह था, हम लोग को लग रहा था कि प्रैक्टिकल चीज नहीं, क्योंकि 75 साल में हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, अब कोई सरकार 2 साल के बाद गिर जाती है, हम लोग डाइवर्स डेमोक्रेसी है, अब वो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, हादसे हो जाते हैं जिसके चलते सरकारें गिरते हैं, जब सरकारें गिर जाते हैं तो उसको प्रेसिडेंट रूल में थोड़ी हम लोग को रखा जा सकता है, उस स्टेट को चुनाव तो करना पड़ेगा, पॉपुलर गवर्नमेंट रहना चाहिए, तो ये कैसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? एक स्टेट का चुनाव एक 5 फेज में करवाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान का, स्टेट का, सेंटर का, लोकल बॉडीज का कैसा करवाएंगे? सो क्या आएगा बिल में देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग हमारे इन हाउस डिस्कशन करके उसके ऊपर हम एक पोजीशन लें।
विकास जी, एक राष्ट्र एक चुनाव उस पे रिपोर्ट आनी है, तो क्या रुख रहेगा?
वन नेशन वन इलेक्शन ये संघतांत्रिक नीति का प्रतिफलन है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे थे उसी आधार पर जब हम क्रांतिकारी संघर्ष किया है, क्रांतिकारी संघर्ष में विभिन्नता की प्राधान्य थे, आदमी हर जगह के एक होकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई किया। दुर्भाग्य यह है कि अभी जो सरकार में है वो तो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई का इसका कोई इतिहास है नहीं, उसीलिए समझते नहीं है कि हमारा कंट्री का मूल मुद्दे क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमको ये युक्त राष्ट्र जो स्ट्रक्चर दिया है इसको हमको रखना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसको आगे बढ़ाने का जो चिंता है इसका खिलाफ है वन कंट्री वन नेशन। अब जोर से एक साथ को रस्सी देके पकड़ के बांधेंगे ये नहीं हो सकता, सबको अपना अपना क्षेत्र में पूरा स्वाधीनता देना पड़ेगा, इसी के आधार पर हमको यूनिटी होगा। इसीलिए हम वन कंट्री वन नेशन ये कंसेप्ट का सख्त विरोध है।
अभिनंदन जी के दो कानून हैं जो कि सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है कि उसको आगे लेके चले, एक तो एक राष्ट्र एक चुनाव का बिल, उस पर रिपोर्ट होना है, और दूसरा जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल है। आम आदमी पार्टी का इन दोनों पे क्या रुख रहेगा?
देखिए ये बीजेपी की बड़ी टिपिकल टैक्टिक्स हैं, तो आप उस तरफ देखें या उस तरफ लोगों का ध्यान बटाएं जो उतनी प्रायोरिटी एक्चुअली देश के लिए है ही नहीं। अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें, और आप ही के शो पे पिछले सत्र से पहले भी हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसी जो पॉलिसीज ये सेंट्रल गवर्नमेंट लाना चाहती है जो कि इजीली वर्कड आउट भी नहीं है, आप क्या ये प्रोजेक्शन करते हैं जहां पे वोटरों के नाम कट रहे हैं, खुलेआम कट रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे ये पर्दा डाल डाल के दूसरी तरफ लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आप मुझे बताएं कि कोई एक ऐसी पॉलिसी हो, कोई एक ऐसा बिल हो जो इन्होंने पिछले 5 साल में ऐसा पास करा हो या ऐसा प्रेजेंट किया हो जिससे आम आदमी की लाइफ पर कोई फायदा होता हो। जब भी पार्लियामेंट सेशन आता है तो आम आदमी जो होता है वो डरा हुआ होता है, आम इंसान, क्योंकि उन्हें पता है कि अरे बाप रे अभी और किसी चीज पे टैक्स आ जाएगा। तो लोग तो आज की डेट में पार्लियामेंट सेशन से डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सारी चीजें जो हैं वो इधर उधर की बात होगी, लेकिन जो आम इंसान के मुद्दे हैं उस पे बिल्कुल मिट्टी डाल दी जाएगी। तो हमारा काम यही रहेगा कि जो असली मुद्दे हैं उन पे सरकार का ध्यान लाया जाए, उनको अकाउंटेबल बनाया जाए कि जो वो कन्वीनियंटली उधर मुंह करके अपनी कॉरपोरेट रेवड़ियों के चक्कर में लगे रहते हैं या डिवाइसिव पॉलिटिक्स करने के चक्कर में लगे रहते हैं, आप कम से कम ये तो देश को बताएं कि आप ये जो 4 बिल ला रहे हैं वो इसके बनिस्बत या इसके अलावा आप दूसरी 5 चीजों पर डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या आपकी मजबूरियां हैं जो आप इकोनॉमी पे ढंग का डिस्कशन नहीं करते हैं और इधर उधर की फालतू इश्यूज को लाके उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, पूरा देश अब ये देख रहा है।
वक्फ बिल पे कुछ विशेष टिप्पणी?
जैसे कि मैंने आपको कहा है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, देखिए जो चाहे वो वक्फ बोर्ड का हो, चाहे वो यूसीसी का हो, चाहे वो कोई भी और ऐसी सो टू स्पीक जो इन्होंने कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें ये जान के उठाते हैं, मैं जैसे कि आपको बोल रही हूँ बाकी सारी चीजों पे जिस तरह से प्रेजेंटेबल किया जाएगा उस पर विचार होगा, उस पर पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर लोगों के साथ विचार होगा, उसी के तरीके से हम अपनी ओपिनियन रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शन के टाइम पे ऐसे बिल लाए जाते हैं वो बहुत क्लियरली डिवाइसिव पॉलिटिक्स का नतीजा है। सत्य ये है कि जो आम लोग हैं उनको इस सबसे नहीं फर्क पड़ता है, आम इंसानों को अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए, इन मुद्दों से ज्यादा फोकस करेंगे उन मुद्दों पे जो आपकी और मेरी लाइफ को बेहतर बनाएगा।
डॉक्टर हुसैन, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आने वाले सत्र में विपक्ष को एक जुट रख के चलाने का, 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, आम आदमी पार्टी के साथ कई लोग आपके विपक्ष के साथी उनके साथ खड़े हुए, कांग्रेस अलग लड़ रही है दिल्ली में, तो इन सब का असर कैसे दिखेगा आने वाले सत्र में?
हम लोग पार्लियामेंट के इश्यूज पे पार्लियामेंट के अंदर एकजुट होकर लड़ेंगे, स्टेट्स में इलेक्शन अलग अलग लड़ेंगे, देखते हैं चुनाव में क्या होता है। एक दूसरा जो है ये चुनाव के नतीजे और स्टेट्स में जो चुनाव होते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसको ऑल इंडिया लेवल पे जो यूनिटी है, पार्लियामेंट के अंदर जो यूनिटी है, फ्लोर पे जो यूनिटी होती है, उस पर कोई प्रॉब्लम होने वाली है।
तो आपकी तरफ से कोई विशेष अप्रोच होगा ताकि सारी एकजुटता दिखे और विपक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे घेरा बनाए रखे?
फ्लोर कोऑर्डिनेशन बढ़ाना पड़ेगा, फ्लोर कोऑर्डिनेशन बेहतर करना पड़ेगा, सबको साथ लेके जो जन के मुद्दे हैं, जो आवाम के मुद्दे हैं, उनको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा जब सारे एकजुट होकर रहेंगे।
अभिनंदन जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जो कि इस वक्त दिल्ली में आपके विरुद्ध चुनाव लड़ रहा है, ठीक है आपने बात कही कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना प्राथमिकता रहती है चुनाव के दौरान, लेकिन क्या इस के बाद जो आने वाला सत्र है, क्योंकि 5 तारीख को दिल्ली का चुनाव है, 8 को नतीजे निकलेंगे, तो उसका कहीं ना कहीं आपको लगता है कोई छाया पड़ेगी विपक्ष के एकजुटता पे या विपक्ष के जो पूरी तैयारी है?
बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि विपक्ष जो है, जो कि देश की जनता का ही रिप्रेजेंटेशन है, तो देश की जनता जो है वो अब करंट रिजीम जो है उसको समझ चुकी है। देश की जनता को ये पता है कि करंट रिजीम जो है उसने इकोनॉमी को बिल्कुल डीरेल कर दिया है। देश की जनता को ये पता है कि जो करंट रिजीम है उसने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है। अजीब तरह की एक प्राइवेटाइजेशन और कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो लाया गया है। तो ये जो पार्लियामेंट की आवाज जो बनेगी वो किसी पार्टी या किसी ऑपोजिशन या स्पेसिफिक उसकी नहीं, ये देश की आवाज की तरह आएगी। और मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा। हाँ, फर्क ये जरूर पड़ेगा कि जब आम आदमी पार्टी और जोर शोर से और बहुमत से जीत के आएगी दिल्ली में, तो आम लोगों की जो आवाज है वो और पार्लियामेंट में मजबूत करेगी।
अग्रवाल जी, आपने सुना विपक्ष के लोग तमाम सारी बातें हैं उनकी, वो चाहते हैं कि इन सब पे ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, इन सारे मुद्दों पे आपकी क्या राय है?
आप पार्टी के प्रवक्ता ने जिस प्रकार कहा कि मिडिल क्लास की बात करना चाहते हैं, तो बिल्कुल स्वागत है उनका। मिडिल क्लास के सभी समस्याओं को रखें, और हम अब सरकार की तरफ से तो पूरी तरह से उसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि समाज के हर वर्ग के लिए विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। बजट एक अच्छा सशक्त माध्यम है, उसमें हम हर वर्ग को आगे लेके जाएंगे, उनके लिए योजनाएं लाएंगे, उनके लिए विकास के रास्ते खोलेंगे उनके लिए। और जहां तक गरीबों का सवाल है, जिस तरह से पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाएं सामने लेके हम आए हैं, जिस तरह से उनका पेनिट्रेशन हर वर्ग में, हर व्यक्ति में, हर घर में, हर क्षेत्र में, सरकार के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भ्रष्टाचार खत्म करने के साथ, जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं का जमीन पे लेके हम आए हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। चाहे वर्ल्ड बैंक को देख लीजिए, ग्लोबल लेवल पे G20 समिट में भी इसकी तारीफ की गई, किस तरह मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने में हमारी सरकार सफल हुई है। और इसी का प्रतिफल है कि 25 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या को हम पिछले कुछ ही वर्षों में गरीबी की रेखा से उभार के ऊपर लेके आए हैं। लगभग 36 लाख करोड़ का धनराशि जन कल्याणकारी योजनाओं से पिछले 10-11 वर्ष में बिना किसी लीकेजेस के लोगों के खाते में सीधी पहुंची है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर घर जल मिशन हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, शौचालय बनाने का कार्य हो, तो ये कोई नहीं कह सकता कि जन कल्याणकारी योजनाओं में गरीबों के लिए अभूतपूर्व कार्य पिछले कुछ वर्षों में नहीं हुआ है, या कोई नहीं कह सकता कि आर्थिक प्रगति के मार्ग पे भारत बहुत तेजी से अग्रसर हुआ है। पूरा विश्व इस बात को मान रहा है, फिर भी अगर कोई सुजेशन है बजट के अंतर्गत तो हम उनका स्वागत करते हैं।
आपने परिचर्चा सुनी, जो बजट का सत्र है बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है, उसमें जो सरकार की तरफ से जो प्राथमिकता रहेंगी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्राथमिकता रहेंगी, और साथ ही साथ विपक्ष चाहे कितनी सारी दरारें हों वो एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये जरूर है इस संदर्भ में कहना कि दिल्ली के चुनाव 5 फरवरी को होंगे और 8 को चुनाव के परिणाम आएंगे, तो क्या ये परिणाम जैसे भी आएंगे, क्या इसका कोई भी छवि या इसकी कोई छाया इस आने वाले सत्र में पड़ेगा? अलग अलग पहलू पे हमने बातचीत की, अभिनंदिता माथुर जी आम आदमी पार्टी की तरफ से, डॉक्टर सैयद नसर हुसैन कांग्रेस की तरफ से, विकास रंजन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और गोपाल कृष्ण अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से। बातचीत के लिए आप सब आए, अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
अभी आप सुन रहे थे विशेष परिचर्चा संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिनंदिता माथुर, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार KV प्रसाद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और यूट्यूब चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com www.gov.in